ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विपक्ष के अवरोध हटने के बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक सुचारू। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर सामान्य चर्चा शुरू। प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल भारत सीमा के विषय में दिए गए वक्तव्य पर प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल द्वारा स्पष्टीकरण। सीमा समस्या का समाधान कूटनीतिक संवाद और वार्ता के माध्यम से किया जाएगा, परराष्ट्र मंत्री खनाल का कथन। संपत्ति छानबीन आयोग द्वारा संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई गई आसार मसांत तक। किसान सूचीकरण प्रणाली में देश भर के लगभग 25 लाख किसान जुड़े और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सामूहिक गोलीबारी की घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। विपक्षी दलों का अवरोध हटने के बाद प्रतिनिधि सभा में आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान बजट पर सामान्य चर्चा शुरू हो गई है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने वक्तव्य के साथ संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने जानकारी दी कि राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान पर केवल सैद्धांतिक चर्चा होगी, जबकि मंत्रालयवार कार्यक्रमों और योजनाओं पर विनियोजन विधेयक के दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके लिए 4 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट पर हुई चर्चा में सत्तारूढ़ पक्ष में सांसदों ने कहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था की समग्र समस्याओं का स्थायी समाधान करने वाला और दिशा देने वाला है। सांसदों ने कहा कि बजट ने पलायन, आयात और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों का उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास की ओर मोड़ने के लिए परिवर्तनकारी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सांसदों ने यह भी कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष का बजट न केवल अर्थव्यवस्था के व्यापक पुनर्संरचना की दिशा में आगे बढ़ा है, बल्कि सुशासन सुधार की गति को भी मजबूत करेगा और निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करेगा। वहीं विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि बजट में आम नागरिकों की समयानुकूल समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने बिजली उपभोग पर लगाए गए मूल्य वर्धित कर से बिजली की खपत घटने और बजट के लक्ष्यों के प्रभावित होने की आशंका जताते हुए कहा कि वास्तविक परिस्थितियों का सही आकलन किए बिना बजट प्रस्तुत किया गया। इससे पहले कार्यसूची पर प्रक्रिया आगे बढ़ने के दौरान श्रम संस्कृति पार्टी के सांसदों ने प्रतिनिधि सभा के बेल का घेराव कर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने उन्हें बोलने का समय नहीं दिया। बाद में सभामुख ने रोस्ट्रम के सामने विरोध कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह करते हुए उन्हें बोलने का समय दिया। इसके बाद श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हरकराज राय ने सदन को विधि और संविधान के अनुसार चलाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि तभी देश में सुशासन स्थापित हो सकेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री शाह द्वारा सीमा संबंधी मुद्दे पर दिए गए बयान को गंभीर गलती बताते हुए इस विषय पर चर्चा के लिए सभामुख से रूलिंग देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शाह के बयान से सीमा क्षेत्र में समस्या और बढ़ी है तथा सीमा अतिक्रमण के मामलों की जांच और स्थिति का आकलन करने के लिए सेना को सीमा क्षेत्र में भेजा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री शाह ने आज शाम सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री शाह ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से विद्यमान संबंधों के प्रति उच्च सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह द्वारा नेपाल भारत सीमा संबंधी दिए गए बयान पर प्रतिनिधि सभा में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का बयान दश गज्जा अतिक्रमण और क्रॉस बॉर्डर कब्जे से संबंधित था। आज की बैठक में सभामुख से समय लेकर परराष्ट्र मंत्री खनाल ने कहा कि सीमा समस्या के समाधान के लिए नेपाल इंडिया बाउंड्री वर्किंग ग्रुप और अन्य संयंत्रों द्वारा मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी सहित क्षेत्र नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं और इस विषय पर सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट है। परराष्ट्र मंत्री ने यह भी कहा कि सीमा संबंधी मुद्दे को कूटनीतिक माध्यम में ऐतिहासिक तथ्य और मानचित्रों के आधार पर हल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस पर भारत के साथ लगातार संवाद जारी है। प्रधानमंत्री शाह द्वारा सन 1816 की सुगौली संधि के संदर्भ में ब्रिटेन की भूमिका पर दिए गए बयान के बारे में मंत्री खनाल ने स्पष्ट किया कि नेपाल ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं मांगी है, बल्कि उस समय के संदर्भ को समझने के लिए केवल हस्ताक्षरकर्ताओं का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद नेपाल और भारत का द्विपक्षीय विषय है और इसे आपसी समझदारी से ही सुलझाया जाना चाहिए तथा सरकार इस पर अड़ीग है। परराष्ट्र मंत्री ने बताया कि दशगज्जा क्षेत्र में अतिक्रमण और सीमा स्तंभों के प्रबंधन के लिए तकनीकी टीमें सक्रिय हैं और ज्वाइंट फील्ड सर्वे टीम विभिन्न स्थानों पर काम कर रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि संसद में बजट पेश होने से पहले सूचना लीक होकर अनियमितता होने संबंधी प्रचार में कोई सच्चाई नहीं है। प्रतिनिधि सभा की अर्थ समिति की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व और व्यय के अनुमान बजट के मुख्य प्रावधानों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन पर लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार है। संपत्ति जांच आयोग ने संपत्ति विवरण जमा करने की समय सीमा आषाढ़ के अंत तक बढ़ा दी है। आयोग के दायरे में आने वाले पदाधिकारियों ने बताया है कि संपत्ति संबंधी विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया में है और समय पर्याप्त नहीं है। इसके बाद अंतिम बार के लिए एक महीने की अवधि बढ़ाई गई है। ये जानकारी आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार भंडारी ने दी। जेएनजी आंदोलन के दौरान कुछ कार्यालयों में आगजनी होने के कारण विवरण संकलन में कठिनाई हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की किसान सूचीकरण प्रणाली में देश भर के लगभग 25 लाख किसान जुड़े हैं। किसानों को भूमि के विवरण और कृषि उत्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक सहूलियत और सुविधाएं देने के उद्देश्य से किसानों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। ये जानकारी कृषि सूचना केंद्र के अधिकारी संजीव पंडित ने दी। नेतृत्व मिलने के बाद नवगठित विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रबंधन मंत्रालय ने संस्थागत और नीतिगत कार्य शुरू कर दिया है। नेपाल सरकार के हालिया कार्य विभाजन के अनुसार पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय से विज्ञान तथा प्रविधि को हटाकर नवप्रवर्तन जोड़कर विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मंत्रालय की स्थापना की गई है। इस मंत्रालय में स्वतंत्र सांसद महावीर पून ने मंगलवार को मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। मंत्रालय की सचिव के रूप में इंजीनियरिंग सेवा की प्रमिला बज्राचार्य ने भी कुछ दिन पहले ही जिम्मेदारी संभाली है। वैदेशिक रोजगारी दिलाने के नाम पर आकर्षक वेतन का लालच देकर आम लोगों से 30 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की पुलिस टीम ने सिंधुपाल चौक के 29 वर्षीय सुमन शाही, रामेछाप के 47 वर्षीय बेद बहादुर सुनोवार, झापा के 45 वर्षीय अनिल अग्रवाल और तनहू के 37 वर्षीय विवेक अधिकारी को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सामूहिक गोलीबारी की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कम से कम 12 वयस्कों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। इस गोलीबारी में 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। इन सभी को गोली लगी है, इनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। ये घटना मंगलवार देर रात क्लीम लैंड की एक झुंगी बस्ती में हुई। हमलावरों की तलाश के लिए छानबीन जारी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के अवरोध हटने के बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक सुचारू, आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर सामान्य चर्चा शुरू। प्रधानमंत्री द्वारा नेपाल भारत सीमा के विषय में दिए गए वक्तव्य पर प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल द्वारा स्पष्टीकरण। सीमा समस्या का समाधान कूटनीतिक संवाद और वार्ता के माध्यम से किया जाएगा, परराष्ट्र मंत्री खनाल का कथन। संपत्ति छानबीन आयोग द्वारा संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई गई आषाढ़ मसान तक। किसान सूचीकरण प्रणाली में देशभर के लगभग 25 लाख किसान जुड़े और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सामूहिक गोलीबारी की घटना में कम से कम 12 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।